मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 13 सितंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है और इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री गणेश अपनी ही तरह हम सबको विवेक शक्ति प्रदान करें, हम सब एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा ताल मेल के साथ रहने की जो दृष्टि है वह अधिक से अधिक गहरी और विकसित कर सके। तो दोस्तों आइए अब हम लोग लाइफ मैनेजमेंट पर बात करें और आज की लाइफ मैनेजमेंट को मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिया है, यूं कह लीजिए कि पहले के जो विषय होते थे उनसे थोड़ा सा हटकर है और यह विषय ऐसे ही सुबह इत्तफाकन मेरे दिमाग में आ गया। मेरे दिमाग में बात आई कि गणेश जी हैं, हमारे जितने भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, किसी भी धर्म के हों, देखिए हमारे दिमाग में जो उनकी तस्वीर बनी हुई है वो एक फिक्स उम्र की बनी हुई, जैसे गणेश जी के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक पर्टिकुलर उनकी एज हमको दिखाई देती है चित्र में, है ना। राम के बारे में सोचते हैं तो उनकी एक एज दिखाई देती, उम्र दिखाई देती है। गुरु नानक के बारे में सोचते हैं तो उनकी एक उम्र दिखाई देती, चलिए गुरु नानक जी की तो जो इमेज हमारे दिमाग में आती है वो थोड़ी सी एक वृद्ध अवस्था की आती है, लेकिन देखिए राम कृष्ण गणेश इनके बारे में जो इमेज बनती है वो वृद्धावस्था की नहीं बनती, है ना, युवा या थोड़े से युवा से अधिक इस तरह की इमेज बनती है। तो मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई कि क्या ये कभी वृद्ध नहीं हुए होंगे। अब ठीक है कह सकते हैं कि भैया ईश्वर है, ईश्वर तो काल से परे होता है तो वो वृद्ध होने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन सामान्य तौर पर बस यूं ही बात करने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो फिर मुझे लगा कि चलिए मैं मान लेता हूं कि ये कभी वृद्ध नहीं हुए और कभी होंगे भी नहीं, अच्छी बात है हमारे दिमाग में एक युवा की तस्वीर बनी रहे और कम वृद्ध की तस्वीर बनी रहे, इमेज बनी रहे, तो अच्छी बात है, उसमें हर्ज क्या है। तो इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल मनुष्य भी कर सकता है, हम सब भी कुछ उसी तरह का उपाय करें, उसी तरह की कुछ ऐसी चीजें अपने लिए ढूंढें कि हम भी युवा बने रहें। तो बस ऐसे सोचने के दौरान कुछ दिमाग में ऐसे फितूर से आ गए हैं, मैंने सोचा कि चलिए उसको फितूर मैं आप लोगों से ही आज शेयर कर लेता हूं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सच यह है कि जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो देखिए वृद्धावस्था में दो तीन चीजें अक्सर हमारे दिमाग में आ जाती हैं उसके बारे में जैसे ही हम सोचते हैं। पहला तो यह है कि हमारा शरीर कमजोर हो गया है, निश्चित रूप से अगर हम अपनी जवानी की अवस्था से वृद्धावस्था की तुलना करें तो शरीर थोड़ा सा तो कमजोर हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय जितनी एनर्जी होती है, शारीरिक क्षमता की बात मैं कर रहा हूं, उतनी शारीरिक क्षमता नहीं रह जाती, उस समय आप जो दौड़ लगा लेते आज आप उतने दौड़ नहीं लगा सकते हैं वृद्धावस्था में, ये सब ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, इसके अब दूसरे पक्ष पर मैं आता हूं। दूसरा पक्ष ये है दोस्तों कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति का भी इसके पीछे कुछ सोचा समझा उद्देश्य हो कि भैया इनके शरीर को कमजोर कर दो। क्यों कमजोर कर दो, इसलिए नहीं कि वो अब हमें खत्म करना चाह रहा है, हमें मृत्यु के निकट पहुंचा रहा है, बल्कि शायद वो चाहता है, ईश्वर चाहता है कह लीजिए या भगवान गणेश चाहते हैं कह लीजिए कि इसके शरीर को धीमा कर दो, थोड़ा स्लो कर दो ताकि ये जरा सा टिके, एक जगह टिक करके बैठे और फिर वो अपना ध्यान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करे, या अगर हम ईश्वरीय शब्दावली में कहना चाहें तो वो थोड़े से जो दैवीय किस्म के काम होते हैं, समाज के काम, अध्यात्म, चिंतन, मनन, ये सब दैवीय कार्य ही है, मैं ऐसा मानता हूं, तो इस पर वो थोड़ा सा फोकस करे, या यूं कह लीजिए कि वो बाहर जो भाग दौड़ करते हैं इसने अपने समय खराब किया है ना, उसको रोको, अब एक जगह उसको केंद्रित करो, बैठाओ कि भैया थोड़ा सा रुको, यहां आराम करो और उसको ये अवसर मिल सके कि अब वो कुछ बड़े कामों में अपने को लगा सके। पहली बात तो मुझे मित्रों ये लगती है। दूसरी बात आप ये भी पाएंगे, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती जाती, मानसिक क्षमता छीजती जाती है। हालांकि बहुत से इस पर आविष्कार हुए हैं, शोध हुए हैं और इनको रिजेक्ट किया गया है। वैसे ठीक है, न्यूरॉन्स मरते रहते हैं वो कम होते चले जाते हैं, लेकिन यह भी पाया गया है कि अगर व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता को बनाए रखना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि वह उसका लगातार उपयोग करता रहे। सोच विचार चिंतन मनन लेखन पाठन इस तरह की चीजों में लगा रहे, तो इससे जो न्यूरॉन्स के जो मरने की गति होती है, जो हमारे दिमाग में स्मरण शक्ति को कनेक्ट करने का, संचार माध्यमों को कनेक्ट करने का, संचार माध्यम का काम करती हैं, उनके डिके होने की यानी कि उनके नष्ट होने की गति धीमी पड़ जाएगी और वो शार्प हो जाएंगी। देखिए, इसका प्रमाण आपको नोबेल प्राइज में मिल जाएगा। नोबेल प्राइज जिनको भी मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में मिले, केमिस्ट्री में मिले, फिजिक्स में मिले, लिटरेचर में मिले, आप अक्सर पाएंगे कि वो बड़ी उम्र में ही लोगों को नोबेल प्राइज मिलते हैं और उनके अनुसंधान भी वो बड़ी उम्र में ही किए गए होते हैं। यानी कि जब ये अनुसंधान सब कर रहे हैं, नई नई थ्योरी दे रहे हैं, नई नई चीजें खोज रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका दिमाग पहले से तो ज्यादा तेज है जबकि उम्र अधिक हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली बात तो यह कि इससे यह सिद्धांत झूठा पड़ जाता है कि जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, फिर आप मेरे पहली बात से उसको जोड़ दें कि अब वो जो काम कर रहा है ना, वो फोकस्ड तरीके से कर रहा है। तो जब हम किसी काम को फोकस्ड तरीके से करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस काम करने की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। मतलब अब आप चीजों को इधर उधर नहीं देख रहे हैं, अब चीजों को गहराई में देख रहे हैं, आप लंबाई चौड़ाई में नहीं देख रहे हैं, अब चीजों को डेप्थ में देख रहे हैं। और जब आप डेप्थ में देखते हैं तो स्वाभाविक है कि जो सारी चीजें हैं वो तो डेप्थ में ही हैं, ऊपर की चीजें तो सबको दिखाई दे रही हैं। अगर मुझे डायमंड ढूंढना है तो भैया बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी, अगर मुझे समुद्र से मोती निकालना है तो बहुत गहरे डुबकी लगानी पड़ेगी। तो गहरे जाने पर ही ये जो अमूल्य वस्तुएं हैं, अमूल्य उपलब्धियां हैं, वो होती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति शरीर को धीमा कर देती है वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते, ताकि अब वो गहरे उतर सके, इधर उधर हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। और फिर अब आपके पास इतने अनुभव हो गए, आपने ढेर सारी चीजें करके देख ली हैं, और इसके बाद अब आपको अंदाज हो गया है कि यार ये चीज मुझे करनी चाहिए, इसे ही मैं कर सकता हूं, बाकी तो सब बेकार की बात है, बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो अनुभव है वो आपको फोकस्ड कर देता है। मित्रों, इतिहास इस तथ्य से भरा पड़ा है कि लोग अपने जीवन की बड़ी उम्र में भी लगातार काम करते रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि नई नई चीजें सीखते रहे हैं। देखिए, काम करने का तो यह कि भाई ठीक है, चलिए मैं जिस काम में पहले लगा हुआ था मैं उसी काम को कर रहा हूं, तो उसको करना तो आसान हो जाता है क्योंकि वो मेरी आदत में शामिल हो गया है, मैं उसमें ढल चुका हूं, या यूं कह लीजिए कि वो काम मुझ में ढल चुका है तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो वृद्धावस्था में भी बकायदे पूरे अलर्टनेस के साथ काम करते हैं, मतलब फिजिकली भी वो फिट है और सबसे बड़ी बात है कि वो मेंटली भी फिट है और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। मेरे एक मित्र हैं, वाईएस दोस्त हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी आईएएस रहे हैं अभी, उनकी उम्र मैं समझता हूं शायद 95-96 साल की है, 95, और मैं साल भर पहले तो उनसे मिला ही हूं। वो अपने समय की बातों को जिस तरीके से आंखों देखा हाल की तरह सुनाते हैं, मैं उनके चेहरे की तरफ देखता रह जाता हूं कि बाप रे, छोटी छोटी बारीकियां वो अद्भुत तरीके से बताते हैं, मैं दंग रह जाता हूं। मैं जब पीछे जाकर के सोचता हूं 20 साल पहले की बातें तो मुझे याद नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से वो बताते हैं। शार्पन मतलब अद्भुत क्षमता उनमें वो मुझे दिखाई देती है, तो वो फोकस्ड होते चले जाते हैं। तो पुरानी चीजों को तो चलिए आप याद करते चले जाएंगे, उनको बता देंगे क्योंकि उनमें आप ढल चुके हैं, लेकिन नई चीजों को सीखना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है और लोगों ने ऐसा किया है। लोगों ने ऐसा किया है कि बिल्कुल नई चीजों की वो शुरुआत कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर कि सुकरात बहुत बड़ी उम्र में वाद्य यंत्र सीख रहे थे, बहुत बड़ी उम्र में। और काम करने का जहां तक सवाल है फ्रेंड्स, कि जो माइकल एंजेलो है वो 80 साल की उम्र में अपनी नई पेंटिंग पर काम कर रहे थे, जो उनकी सबसे महान पेंटिंग बनी। और न्यूटन तो 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत करते थे, ये प्रमाण है। गांधी जी के बारे में आप देखिए, गांधी जी 1948 में, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मारा गया है, सोचिए उनकी हत्या की गई है। और उससे पहले वो क्या कर रहे थे, इतिहास में आप पढ़ते हैं कि वो बकायदे नोआखली में जाकर के दंगाइयों के बीच में पूरे आत्मविश्वास के साथ उन दंगों को रोकने के लिए घूम रहे थे। यानी कि फिजिकली वो इतने फिट थे और मेंटली कितने स्ट्रांग थे, दंगाइयों के बीच में वो घूम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, निष्कर्ष ये है, सीधी सी बात है कि हमारी जो उम्र है वह बेसिकली हमारे विचारों से जुड़ी हुई है। अगर आप विचारों से युवा हैं तो उम्र में भी आप युवा हैं, और अगर आप विचारों से वृद्ध हैं तो समझ लीजिए कि युवा होकर भी वृद्ध हैं। यानी कि हमारी उम्र का जो पैमाना हो सकता है, जो मापदंड हो सकता है, वह होता है हमारे अपने विचार, और वही विचार हमसे कर्म कराते हैं। तो दोस्तों इसके लिए तैयार हो जाइए, और जो वृद्ध हो रहे हैं वो भी अपने आप को तैयार कर लें, और जो हो चुके हैं वो फिर से युवा हो सकते हैं, बहुत गुंजाइश है उस अपने इस युवा उम्र को या अपने इस वृद्ध उम्र को वो एक तरीके से आप वरदान मान करके चलें, और उसमें अफसोस करने का कोई कारण नहीं है कि हाय अब हमारे पास जीवन के कम ही साल बचे हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में है बस इतना ही। नमस्कार।